نحمد ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ اتوار کسی صاحب نے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا اور اسی پر مبنی پھر اسلام آباد میں بھی منڈے کو گفتگو ہوئی اور مجھے ان صاحب کا نام یاد نہیں. کسی صاحب نے مجھ سے یہ فرمائش کی تھی کہ سنڈے کو لاہور میں جب یہ نشست ہوتی ہے تو اسی نقطے پر گفتگو کی جائے. وہ سوال یہ تھا کہ یہ نظام شمسی کس طرح سے تباہ ہوگا یا قیامت کیسے بپا ہوگی, اور اگر یہی صورتحال ہے کہ قیامت اس قدر شدت سے بپا ہوگی کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے, تو پھر انسان کس طرح سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ہمارے یہاں اکثر اوقات رویہ یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے سوالات پہ ہم یا تو استغفر اللہ پڑھنے لگتے ہیں یا لوحال پڑھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کیسا ہی کیوں نہ کیا جائے, اگر انسان کو اس کا جواب آتا ہے تو اس کا جواب دے دینا چاہیے تاکہ سوال پوچھنے والے کا ذہن مطمئن ہو جائے. بات یہ ہے کہ یہ یونیورس, اسی نشست میں کئی بار یہ گفتگو ہوئی کہ 70,000 جہان ہیں اور 20,000 عالم ہیں. یہ زمین کے ارد گرد جو سیارے ہیں ان سب کو ملا کے ایک عالم بنتا ہے. اس نظام شمسی میں سب سے بڑا سیارہ سورج ہے جس پر کئی ہزار سینٹی گریڈ کے حساب سے ٹیمپریچر موجود ہے, لیکن وہ ٹیمپریچر کم ہوتا چلا جا رہا ہے. زمین ہماری دو طرح سے آپ سب کے علم میں ہے, بلکہ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں کہ زمین کی گردش دو طرح سے ہے. ایک اس کے ایکسس پہ گھوم رہی ہے اپنے محور پر, اور دوسرا آربٹ ہے اس کا, اور اس پر موجود چیزوں کو گریویٹیشنل فورس نے ہولڈ کیا ہوا ہے. اگر کہیں زمین کی جو آربٹ میں گردش ہے اپنے آربٹ پر, اگر کسی وجہ سے اس میں ایک فریکشن آف اے ڈگری کی بھی کمی بیشی ہو جائے تو زمین کسی نہ کسی دوسرے سیارے سے جا ٹکرائے گی. یہ جو قیامت کا ذکر ہے اس میں ایک چیز قرآن پاک میں یہ کہی گئی ہے کہ قیامت کے روز سورج زمین سے سوا نیزے پر آ جائے گا. جب قیامت بپا ہوگی تو سائنس کے اینگل سے اگر ہم بات کریں تو زمین کی جو آربٹ پہ موومنٹ ہے, جو اپنے آربٹ پہ گھوم رہی ہے, اس میں خلل واقع ہو جائے گا اور زمین اس کشش کی بیلنس سے آؤٹ ہو جائے گی جس نے اسے ایک مقررہ جگہ پر قائم رکھا ہوا ہے. اور چونکہ سب سے زیادہ گریویٹیشنل فورس سورج کی ہے, کیونکہ وہ سب میں بڑا ہے, تو زمین بہت تیزی کے ساتھ سورج کی طرف لپکے گی, اور ڈسٹینس زیادہ ہونے کی وجہ سے اور اپنی ایکسس کے گرد گھومنے کی وجہ سے یہ ادھر کو جائے گی تیزی کے ساتھ, لیکن پھر سپیڈ کم ہوتی ہوتی. وہ جو سوا نیزے کا ڈسٹینس ہے وہ غالباً ہائیسٹ پوائنٹ سے ہے زمین کے, اور ہائیسٹ پوائنٹ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ جو 33,000 فیٹ کی ہائٹ ہے اس کی. دوسرا सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट K2 है 29,000 समथिंग। तो वो हिद्दत की वजह से समुद्र भी उबल पड़ेंगे और पहाड़ मेल्ट हो जाएंगे, और चूंकि स्पिन हो रही है जमीन अपने मैवर के, तो वो गालों की सूरत में उड़ने लगेंगे। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स अप्लाई जब होगी तो वो कयामत का जो जिक्र है वो 100% साइंस से पूर्व हो जाता है। अब रह गया सवाल कि इस टेम्परेचर में जहां के पत्थर के बने हुए पहाड़ जो कई हजार टन कंप्रेशन से वजूद में आते हैं, वो अगर मेल्ट हो जाएंगे तो फिर बाकी क्या बचेगा जिससे कि इंसान दोबारा खड़े हो जाए। तो उसका बड़ा सिंपल जवाब है, जो साइंस ने मौजूदा तरक्की कर ली है रिसेंटली, अगर कहीं हम उस पर गौर कर लें तो एकदम से मामला समझ में आ जाएगा सबकी। ये चंद साल की बात है जब इंसान ने कामयाब तजर्बा किया क्लोनिंग का, और दुनिया की पहली क्लोनिंग भेड़ डॉली के नाम से वजूद में आ गई। अब ये क्लोनिंग आप सबको मालूम है कि डीएनए से की है, और डीएनए की एक खासियत यह है कि ये तबाह नहीं होता किसी तरह भी, खा किसी टेम्परेचर पर इसे डाल दें ये तबाह नहीं होता। तो वो जो रब ने ये कहा कि मैं जिंदा कर लूंगा इंसानों को उसी हाल में, और जहां जहां भी दफन होंगे वहां उठ खड़े होंगे मुर्दे, तो वो डीएनए का दोबारा से बाल पर निकालने का जिक्र है। और चूंकि ऑक्सीजन बर्न हो जाएगी जमीन पर, यहां हॉट गैसेस होंगी, उस वक्त टेम्परेचर बहुत हाई होगा और तमाम चीजें उलट पुलट हो चुकी होंगी, तो गुमान गालिब यह है कि उस वक्त ये जो एटमॉस्फेरिक चेंज आएगी, उस चेंज से क्लोनिंग का प्रोसेस बहुत तेजी के साथ जारी हो जाएगा। अब वो मरहला जो साइंसदान 3 दिन या 4 दिन में तय करते हैं, वो 3 सेकंड 4 सेकंड में तय हो जाएगा। तो यूं हर इंसान चाहे, एक सवाल ये भी किया जाता था कि अगर कोई एक्सीडेंट में मरा है और उसका कुछ बचा ही नहीं, एयर क्रैश में आमतौर पर यही होता है कि इंसान के जिस्म के आज़ा मांसपेशी दांतों के या एक आध और ऐसी हड्डी जो बहुत सख्त जान है, कुछ मिलता ही नहीं, तो ये कहा जाता था कि वो कैसे जिंदा किया जाएगा, क्योंकि उसका जिस्म का मलबा तो कई मरबा मील में फैला। तो जवाब यह है कि डीएनए तो एक चाहिए है, वो जहां है वहीं से जिंदा हो जाएगा। ये बड़ा सादा सिंपल मामूली से अगर गौर कर लिया जाए तो वो कयामत के रोज जी उठने के मामलात, क्योंकि डीएनए तो पहले बाबा आदम से लेके आज तक महफूज है अपनी जगह, वो तो मरे नहीं, चाहे वो कहीं दफन है, डीएनए नहीं मरता है। तो यूं जिंदा हो जाएंगे तमाम इंसान। एक सवाल तसव्वुफ की रोशनी में कलमा की शरह से क्या मुराद है? अब इस शरह का तर्जुमा, इसका कोई अल्टरनेट लफ्ज मेरे जहन में है नहीं इस वक्त, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन होती है, एक एक्सप्लेनेशन होती है, ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ दर हकीकत शरा होती है। तो कलमा जब इंसान पढ़ता है तो ये किसी नशिस्त में यहां एक जिक्र हुआ, अगर शरा के रेफरेंस से नहीं बात थी, वैसे बात की थी कि इस्लाम की इब्तदा नफी से होती है। इंसान अपनी जात की नफी करता है, अपने ख्यालात की नफी करता है, अपने अकायद की नफी करता है, अपने आदात की नफी करता है और तो और अपनी फितरत की नफी कर देता है। इब्तदा ही नफी से है इस्लाम की ला। और एक अजीब चीज यह है कि कुरान पाक में कहीं आप देख लीजिए, रब ताला ने जिस चीज पर बहुत जोर दिया, बहुत एम्फेसिस ले किया है रब ने, उस आयत या उस जुमले की इब्तदा नफी से की है रब ने। जैसे नहीं है अल्लाह के अलावा कोई माबूद, नहीं हो सकता कोई शख्स नेक, इस तरह रब ने इब्तदा उसकी नफी से की है। इसलिए कि जब तक के पहले से मौजूद चीज की नफी नहीं होगी, उसको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसको रद्द नहीं कर देते हम उसकी जगह किसी नई चीज को दे नहीं सकते। हमारा पहला कंसेप्ट रद्द होगा, उसको हम नेगेट करेंगे तो दूसरा कंसेप्ट उसकी जगह लेगा। एक आदत जो हमारी मौजूदा है, अगर मुझे झूठ बोलने की आदत है, सच बोलने की आदत पैदा ही नहीं हो सकती जब तक कि मैं झूठ बोलने की आदत को रद्द न कर दूं। झूठ को रद्द करूंगा तो सच जगह लेगा। शिर्क को जब तक मैं रद्द नहीं करता, वहदानियत जगह नहीं ले सकती। तो इसलिए इस्लाम की इब्तदा नफी से हुई। जब हम कलमा पढ़ते हैं तो इब्तदा हम ला से करते हैं, वहां पे हम अपने अकायद की भी नफी कर रहे हैं, अपने ख्यालात की नफी करते हैं, अपनी आदात की नफी करते हैं और अपने एतकादात जो पहले से मौजूद हैं उनकी नफी कर देते हैं। और उसकी जगह लेती है एक चीज कि इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ रब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं। अब जब हमने ये इकरार किया रब का कि उसके अलावा इबादत के लायक कोई नहीं, अब लफ्ज इबादत को हमने एक बड़ी महदूद सेंस में ले लिया। इसे अरबी का लफ्ज है, अबद से निकला है और अबद के मायने बंदे के हैं और बंदा लफ्ज बंदगी से निकला है, इताअत। तो रब की इताअत हमने कबूल कर ली, कलमा पढ़ के हमने ये इकरार कर लिया कि हम सवाए अल्लाह के किसी के अहकामात के पाबंद नहीं होंगे, हम अल्लाह के अहकामात की पूरी तरह पाबंदी करेंगे। और हमने ये भी मान लिया कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं जिसके अहकामात पर अमल किया जाए, जिसकी बंदगी इख्तियार कर ली जाए और कोई नहीं ऐसा सवाए रब के। तो वो इबादत जो है वो बमायनी बंदगी के, इताअत के, फरमादारी के आती है। तो जब हम ये कलमा पढ़ते हैं तो हम दर हकीकत रब ताला के साथ एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि आज हम पर ये वाजे हो गई बात और हमने अच्छी तरह से ये समझ लिया कि तेरे अलावा कोई इस लायक नहीं है कि उसकी बंदगी की जा सके। माबूद हम कहते हैं, तो माबूद वो है जिसकी बंदगी की जाए, जिसकी इबादत की जाए और इबादत बमायनी बंदगी के, इताअत के। तो नमाज, रोजा, जकात की बात नहीं है, بات ہے کہ ہر وہ چیز جو رب نے کہی اس کی پابندی کرنا ہم پر فرض ہے، وہ بندگی ہے. اور جب ہم بندگی کے آگے مزید ڈیپتھ میں اترتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تمام عادات و اطوار، اپنے تمام خیالات، اپنے تمام اعتقادات ختم کر دیے اور ہم اللہ کے ارادوں کے ماتحت ہو گئے. ہم وہ چاہیں گے جو رب چاہے گا، ہم وہ کریں گے جو رب چاہے گا، ہم وہ خواہش کریں گے جو رب چاہے گا، اور ہم وہ کریں گے جو رب چاہے گا. یہ ہم نے اس سے ایک کمٹمنٹ کر لی. تو یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے. اور اس کے بعد ہم نے جب یہ کہا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کلمہ میں تو صرف اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں اپنے جذبے کے تحت یہ کہہ رہا ہوں کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو پیغام تو رب کا ہے اور لانے والے کو ہم نے تسلیم کیا کہ صحیح پیغمبر وہی ہے، صحیح میسنجر وہی ہے. تو پھر جو کچھ میسنجر پیغام لے کر آیا اس کی اطاعت ہم پر فرض ہو گئی. تو یہ ایک کلمہ پڑھ کر ہم یہ تمام کمٹمنٹس کر رہے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہے گا. ہماری سوچیں، ہمارے فیصلے، ہمارے اعمال سب اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائیں گے. اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سچے اور آخری نبی جب مانتے ہیں تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہم اسے برحق جانیں، سچ جانیں اور اس کی تعمیل کر لیں. یہ ہے شرح کلمہ کی تصوف کے مطابق. تو وہ ایک مختصر سا جملہ، یہ سب کچھ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے. ایک اور سوال ہے میرے نزدیک، بڑا اہم ہے، شاید آپ لوگ اس کو کوئی اہمیت نہ دیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ہم بہت جگہوں پہ ٹھوکر کھا رہے ہیں کہ کام کرنے والی اگر کرسچن ہے تو کیا اس کے دھلے ہوئے کپڑوں سے نماز ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب براہ راست دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات کو سب کو علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادموں میں ایک نوعمر لڑکا تھا اور وہ یہودی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ذاتی کام سر انجام دیتا تھا وہ یہودی بچہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایسی شفقت فرماتے تھے کہ ایک بار وہ لڑکا بیمار ہو گیا ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر تشریف لے گئے اس لڑکے کے گھر پہ، اس یہودی کے گھر میں، اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر اپنا دست مبارک رکھا ماتھے پر، اور اس کی وہاں بیٹھ کے کئی منٹ تک عیادت کی. اس کو پوچھا، ایک بار کسی نے سوال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور کتے کے بالے ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت یہ بات میرے علم میں نہیں. اتفاق یہ ہے کہ وہاں اس وقت ایک سویپر گزر رہا تھا، وہاں سے کرسچن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم کتے پالتے ہو، تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ کتے کے بالغ ہونے کی نشانی کیا ہوتی ہے. تو तो उसने कहा कि अब बड़ी सिंपल बात है कि कुत्ता जब एक टांग उठा के पेशाब करने लगे तो वो बाले हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जवाब उस सवाल पूछने वाले को दे दिया। उसके बाद जब कभी वो क्रिश्चियन दिखाई दिया कहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीमन उठ के खड़े हो गए कि मेरा उस्ताद है, इसने मुझे एक चीज सिखाई थी। इसी तरह क्रिश्चियंस जिनके बारे में हम ये सवाल इस तरह पूछते हैं, आप में से हर शख्स ने पढ़ा है और एक बार नहीं बारहा पढ़ा कि वो कैथोलिक क्रिश्चियन ही था जिसने मुसलमानों को हबशा में पनाह दी थी। और जब अहले मक्का ने एक वफ़द भेजा था कि इन मुसलमानों को वापस लौटा दिया जाए हमें, तो ये क्रिश्चियन बादशाह ही था जिसने स्टैंड लिया था और नहीं लौटाया था। हम दूसरों को हकीर न समझें, दूसरों की तौकीर करें। वो हकीर नहीं है, तौकीर है। वो हर एक की तौकीर करनी चाहिए। हमारे मुसलमान भाई जो डॉग सेंटर्स में कुत्तों के केयर टेकर्स हैं, वो उन्हीं हाथों से कुत्तों को हैंडल कर रहे होते हैं और उन्हीं हाथों से हमसे हाथ मिलाते हैं, हमारे कपड़ों को हाथ लगा लेते हैं। तो उनके बारे में हम कभी इतने कॉन्शियस नहीं होते। तो याद रखिए कि इस्लाम के इतनी तेजी से फैल जाने में दखल सिर्फ एक बात का था कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लकब ही से जाहिर है कि रहमतुल्लिल आलमीन हैं, वो सबके लिए रहमत का बायस थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बरसती हुई बारिश थी जिसने कभी ये तमीज नहीं की कि ये दोस्त पर बारिश हो रही है या दुश्मन पर है। बारिश का काम है सिर्फ बरसना, और उस बारिश से इस्तफादा, चाहे दुश्मन की जमीनों को जमीनें कर रही हो इस्तफादा, या दोस्त या रिश्तेदार, वो सबको यकसम फायदा पहुंचाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमत की ऐसी बारिश हैं जिससे पूरी कायनात को फायदा मिलता है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तो जिस तरह साहबे कराम लोगों के लिए बहुत मेहरबान और शफीक थे और उनके अखलाक से मुतासिर होके लोग एंड ब्लॉक मुसलमान हुए और मुसलमानों की तादाद नाकाबिले यकीन रफ्तार से आगे बढ़ी, ये उनकी मोहब्बत और शफकत का असर था उसमें। जब हम इस तरह से हकीर समझते हैं दूसरों को, तो हम उन्हें अपने से दूर करते हैं। गैर मुसलमों के लिए तो इंसान को बहुत ज्यादा शफीक और मेहरबान होना चाहिए ताकि वह हमारे किरदार से मुतासिर हों और अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ आ जाएं, ना कि हम उनको इस तरह से हकारत से देखें और उनको अपने से दूर कर दें। ये किसी गैर मुल्क से सवाल आए हुए हैं कि ये कहें। पहला सवाल इनका ये है कि इन वन ऑफ योर लेक्चर्स यू टॉक अबाउट अदर प्लैनेट्स इन यूनिवर्सेस, जहान और आलम। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 92 एलिमेंट्स, कैन अदर प्लैनेट्स इन यूनिवर्सेस हैव सेम एलिमेंट्स? बात ये है कि एलिमेंट, इसका उर्दू का इक्विवेलेंट मेरे जहन में नहीं है, अंसर। अंसर बुनियादी तौर पर एक ही हैं, फॉर्मेशन सबकी एक सी है, फर्क सिर्फ उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। ये आपके इल्म में होगा कि किसी भी चीज को जब हम हिद्दत पहुंचाते हैं तो तमाम एलिमेंट्स या अंसर उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज हो जाती हैं। इसी तरह जब हम किसी भी चीज को हाई स्पीड पर स्पिन करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। यूरेनियम किस तरह एनरिच किया जाता है या प्लूटोनियम, उसकी एनरिचमेंट कैसे होती है? अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे इंसान को अमीर किया जाए, एनरिच किया जाए, तो उसको सोना दे दिया जाता है बहुत सारा। तो यूरेनियम को और प्लूटोनियम को सोने से माला माल करके तो एनरिचमेंट नहीं की जाती। उसका एक बड़ा सिंपल सादा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं बगैर टेक्निकल डिटेल्स में गए, और मैं जाने का अहल भी नहीं क्योंकि मैंने फिजिक्स कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी, साइंस सब्जेक्ट्स मेरे करीब से भी नहीं गुजरे कभी डर के मारे कि वो उनका आचर मेरे हाथों जो होना था। यूरेनियम को इतना गर्म किया जाता है साफ करने के बाद, उसके अंदर जो जब रॉ यूरेनियम निकलता है तो उसकी कंटेमिनेशन हुई होती है, मुख्तलिफ चीजें और उसके अंदर शामिल होती हैं, मिनरल्स मेटल्स, तो उसको साफ कर लिया जाता है तो प्योर यूरेनियम हासिल हो जाता है। उस प्योर यूरेनियम को इस डिग्री तक गर्म किया जाता है कि वो गैस में तब्दील हो जाए। ये तो आपको मालूम है कि मादे की तीन हालतें हैं, ठोस, लिक्विड और गैस। तो वो लिक्विड बनता है पहले, लिक्विड के बाद वो गैस में तब्दील हो जाता है। उन हॉट गैसेस को यूरेनियम की ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू पाइप्स इनटू द सेंट्रीफ्यूज, और वो सेंट्रीफ्यूज जो है वो 1 मिलियन से ऊपर रेवोल्यूशन पर स्पिन कर रही होती है। उसके अंदर रोटर होता है मेड ऑफ ए वेरी स्पेशल मेटल विच इज नोन एज मार्जिंग स्टील। मार्जिंग स्टील से बना हुआ रोटर उसमें स्पिन कर रहा होता है, उससे वो गैस उसके अंदर स्पिन होती है, और वो जून जो स्पिन होती जाती है उसकी एनरिचमेंट होती चली जाती है। उसको हम मैयर कर लोग मैयर करते हैं उसको, हम नहीं, तो अल्लाह ना करे कि फिजिक्स पे ऐसा बुरा वक्त आए कि मैं मैयर करने पे चले जाऊं। वो उसको मैयर जब किया जाता है तो पता लगता है कि 2% एनरिचमेंट हो गई, 3% हो गई, 3.5% हो गई, हत्ता के वो वेपन ग्रेड एनरिचमेंट हो जाती है उसकी। तो स्पिन से भी प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा तब्दील हो जाती हैं। तो ये दो चीजें हैं जो तब्दील करती हैं। इसी जन में एक चीज और मैं क्लियर करता चला जाऊं, हम खाना काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, और जगहों पे तवाफ जहां भी होता है वो क्लॉकवाइज होता है, जिस तरह घड़ी की सुइयां चलती हैं, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होती है ना, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट इज क्लॉकवाइज एंड राइट टू लेफ्ट मूवमेंट इज एंटी क्लॉक। और जहां कहीं भी किसी चीज के गिर्द कोई घूमता है वो क्लॉक लाइक घूमता है, क्लॉकवाइज होता है वो, दैट इज लेफ्ट टू राइट। लेकिन खाने काबा के गिर्द जो तवाफ है वो हमारा राइट टू लेफ्ट है। अब उसकी वजह क्या है? जमीन की मूवमेंट क्या है जो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है जमीन, वो मूवमेंट क्या है? दैट इज क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट। आपने जब कभी बचपन में स्कूल टाइम में फिजिक्स पढ़ी होगी तो गालिबन शायद 9th या 10th में इलेक्ट्रिसिटी का सब्जेक्ट पढ़ा होगा फिजिक्स में आपने। उसमें आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, जो स्टैटिक चार्ज है वो क्रिएट करने का तो एक आसान जरिया फ्रिक्शन है। आप सिंथेटिक फाइबर के ऊपर जिसको नायलन रुफिया में नायलन कहा जाता है, उस पर प्लास्टिक की किसी रॉड को इस तरह से रगड़िए, जब हम उस रॉड को उस पर रगड़ेंगे तो उसके बाद किसी कागज या बाल के करीब उस रॉड को ले जाएं तो कागज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता फौरन। लेकिन अगर आप उसी रॉड को दोबारा अपने हाथ से छू दें और फिर कागज लिफ्ट करें, वो नहीं होगा। वो रगड़ से, फ्रिक्शन से एक स्टैटिक चार्ज क्रिएट होता है और वो स्टैटिक चार्ज उस कागज को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जब हम उसको हाथ से टच कर लेंगे तो वो स्टैटिक चार्ज ग्राउंड हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। और फ्याम में अर्थ, उसे हम कहते हैं सही टेक्निकल टर्म उसकी ग्राउंड है, वो चार्ज ग्राउंड हो जाएगा उसका। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट, वो अगर दो मेटल व्हील ले लें पतले पतले, उनको एक दूसरे के करीब कर लें बिल्कुल, और एक दूसरे के अपोजिट उसको घुमाएं आप, तो जिस तेजी के साथ वो हवा को काटते हुए गुजरते हैं एक दूसरे के बिल्कुल करीब से, उससे एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, एनर्जी डेवलप होती है उससे। वो एनर्जी करंट है। अब जमीन घूम रही है क्लॉकवाइज और आप एंटी क्लॉक जब घूमते हैं, यू जनरेट एनर्जी, और वो रूहानी पावर बढ़ती है हमारी उससे, और उस वक्त जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है, वो रूहानी पावर है जो आपको रब के इतना करीब ले जाती है कि दुआएं कबूल होने लगती हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की ये है। तो इसी तरह जब कोई भी चीज स्पिन की जाएगी और दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फंसी हुई होगी वो, तो उससे जो एनर्जी क्रिएट होगी वहां, उससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब चेंज हो जाएंगी। तो दूसरी जगहों पर चूंकि हीट ज्यादा है, दूसरे प्लैनेट हैं, सूरज है या मरीख है, तो उस पर ठंडक बहुत है, चांद पर ठंडक बहुत है, तो टेम्परेचर की वेरिएशन और उनके घूमने की रफ्तार, इससे उन एलिमेंट्स की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों तब्दील होती हैं। एलिमेंट वही हैं लेकिन वो चेंज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर ये है कि अगर किसी मादे को आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करें तो उसके बाई प्रोडक्ट्स कुछ और हो जाएंगे, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्न करें तो बाई प्रोडक्ट्स कुछ और होंगे उसके। तो कुछ प्लैनेट्स पे जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स और भी चेंज हो जाएंगे। तो यही एक फर्क है दूसरे तमाम प्लैनेट्स पर जमीन की निस्बत। फिर प्रेशर, इसके अंदर किसी चीज को अगर आपने उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करना है तो उसके अंदर प्रेशर बड़ा काउंट करता है। यहां जमीन पर, हमारे रुए जमीन पर, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपोग्राफी के जमीन के एल्टीट्यूड क्या है और उसके जमीनी खद्दोखाल क्या है, ये जमीनी खद्दोखाल जो है वो टॉपोग्राफी कहलाता है। तो ज्योग्राफिकल टॉपोग्राफी क्या है उस पर डिपेंड करता है। हमारे यहां पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए जो हम एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, दैट इज 14.65 पाउंड पर स्क्वायर इंच। हत्ता कि ये जो गैस आप जलाते हैं चूल्हों में, इसका फ्लो और इसका एक पाइप के अंदर कितना वॉल्यूम आ जाएगा वो बड़ा काउंट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस सिलसिले में। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, मूवमेंट, ये सब किसी भी चीज की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पर असरअंदाज हो जाती हैं। तो दूसरे प्लैनेट्स पर एलिमेंट्स यही हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज चेंज्ड हैं। ये एक और इन्हीं साहब का ये सवाल है या किसी गैर मुल्क से किसी और का है कि आई वंस हर्ड इन योर लेक्चर दैट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मेड विद अ स्पेशल काइंड ऑफ नूर। आई फाउंड फॉलोइंग हदीस व्हिच वाज कोटेड फ्रॉम इमाम बाकी बुक दलाल नबुवत। व्हेन आई लुक्ड एट इंटरनेट पीपल क्वेश्चनिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ इमाम्स हदीस, इट इज ऑथेंटिक हदीस। वह हदीस उन्होंने शायद नीचे कोट की हो कहीं, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्ट्स, आई आस्क्ड, अंग्रेजी में तो लफ्ज दूसरे हैं लेकिन उसको मैं आउट ऑफ रेस्पेक्ट उर्दू ही में कह दूंगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट डिड द ऑलमाइटी अल्लाह फर्स्ट क्रिएट। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, अल्लाह फर्स्ट क्रिएटेड माय नूर ऑफ हिज नूर। दिस नूर ट्रेवल्ड अबाउट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अल्लाह। एट द टाइम देयर वाज नो हेवन हेल डिवाइन टैबलेट पेन अर्थ स्काई सन मून जिन और ह्यूमन बीइंग्स। व्हेन ही डिसाइडेड टू क्रिएट ही डिवाइडेड दैट नूर इनटू फोर पार्ट्स। फॉर वन पार्ट ही क्रिएटेड द पेन, फ्रॉम द सेकेंड द लॉ, and from the third he made the earth. यह हदीस मेरी नजर से भी गुजरी है। इसमें दो रवायात हैं, तसव्वुफ में भी दो ही रवायात गिनी गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका की जो तख्लीक हुई वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 4,000 साल पहले थी, और दूसरी रवायत के मुताबिक ये 40,000 साल थी। तो इसीलिए जब हम यहां तख्लीक कायनात पर बातचीत कर रहे थे तो मैंने एक गुजारिश की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अल्लाह की अव्वलीन तख्लीक हैं, तो जिस तरह से हर आर्टिस्ट को अपनी पहली पेंटिंग बहुत अजीज होती है, इसी तरह रब ताला को अपनी पहली तख्लीक बहुत अजीज है, वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी नस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब कहलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक रादर वजूद में आ गई थी जब कुछ नहीं था, रब और उसके फरिश्ते थे। तो रब ताला ने नूर लिया, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया, एक का नाम नूर मोमिनीन रखा और दूसरे का नूर आलमीन। नूर मोमिनीन में से जो तख्लीक हुई सबसे पहले वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक थी, और उसके बाद फिर इस नूर से सिर्फ पैगंबरों की रूहें तख्लीक हुई। बाद में नूर आलमीन जो था वो तो नाम से जाहिर है आलमीन, इससे दूसरे इंसान तख्लीक हुए। मैं उस डिटेल में फर्दर नहीं गया था कि इसी नूर के हिस्सों से फिर और चीजें तख्लीक की गईं, वो हदीस ने बयान की हुई हैं। तो तसव्वुफ में इस तरह से उसको हम कहते हैं। तो ये हदीस मेरी नजर से भी गुजरी है। बाकी चूंकि हदीस कई असहाब के जरिए से पहुंची है हम तक, इसकी ऑथेंटिसिटी या उसके ऑथेंटिक ना होने के बारे में मैं तो कुछ अर्ज कर नहीं सकता। आई एम टू स्मॉल ए मैन फॉर दैट। एक सवाल और है कि आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट ए किंग नेम ज़ुल्करनैन इन सूरह कहफ। वॉज ही ए रसूल और ए पायस एम्परर ओनली, and also they make a wall for the people to prevent them from the attacks of Yajuj Majuj. Please explain who are Yajuj Majuj, are they from human race or they are different creature? Hum tak jo riwayat pahunchi उसके मुताबिक टोटल आने वाले पैगंबर और रसूल और नबी 1,24,000 थे। ये रवायात हैं इसके बारे में, कहीं कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन रवायतन ये है। और इसके बरक्स जो मैक्सिमम नाम हमें मिलते हैं वो हम 40 गिन सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ये मैक्सिमम है। तो अगर इन 40 को एक तरफ कर दें तो सवाल ये पैदा होता है कि 1,23,960 पैगंबर और कौन कौन से थे, उसका कोई ट्रेस नहीं मिलता। तो ये कहना कि कौन कौन पैगंबर थे, अब डिवाइन मैसेजेस हैं, गौतम बुद्ध, अगर उस बुद्ध मत को देखा जाए जो गौतम बुद्ध ने इंट्रोड्यूस कराया, वो इस्लाम के जहूर से कई हजार साल पहले था, लेकिन उसके तमाम प्रिंसिपल्स अगर हम देखें तो इस्लाम के बहुत करीब हैं, वही हैं जो इस्लाम बयान करता है। आप दूसरे कोई मजहब देख लीजिए जो डिवाइन नहीं है, ईसाइयत और यहूदियत तो डिवाइन है, लेकिन बाकी जितने मिलेंगे उनके अंदर हम देखें तो वही प्रिंसिपल हैं जो इस्लाम ने जिसको जोर दिया है। फर्क यह है कि इस्लाम चूंकि सबसे आखिर में आया और मुकम्मल कर दिया गया दीन को, तो उसमें इंसानों की सहूलत को बहुत मद्देनजर रखा है, दीन को सख्त नहीं बनाया अल्लाह ने। लेकिन दुनिया के किसी भी मजहब के असूल एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं हैं, वही हैं, एक दूसरे को कन्फर्म करते हैं। क्या मालूम कि कौन क्या था। तो ये कहना कि ज़ुल्करनैन जिनका जिक्र सूरह कहफ में है वो पैगंबर थे या सिर्फ एक नेक आदमी थे, ये जरा दुश्वार है। कम से कम मैं अपने आप को अहल नहीं पाता कोई हुक्म लगाने के लिए कि वो पैगंबर थे या सिर्फ नेक आदमी, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी नेकी इस मायार की थी कि उनका जिक्र कुरान में किया गया है, तो हमारे लिए वो बायस इज्जत। सिर्फ इतनी बात सही हो जाते हैं कि उनका जिक्र कुरान पाक में अच्छे लफ्जों में किया गया है। एक और सवाल है कि रब ताला क्रिएटेड ईव फ्रॉम एडम एंड नॉलेज वाज गिवन टू हिम, जिन्होंने सवाल पूछा कहना चाहते हैं कि अल्लाह गेव द नॉलेज टू हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बट व्हाट अबाउट ईव, डिड शी रिसीव द सेम अमाउंट एंड फॉर्म ऑफ नॉलेज और देयर वाज सम डिफरेंस बिटवीन देयर नॉलेज। देखिए रवायत यह है कि अम्मा हव्वा को बाबा आदम की पसली से पैदा किया गया, जिस तरह से कि कोई बच्चा किसी मां के यहां जन्म लेता है तो उसके जीन्स में बाप और मां दोनों का खून होता है, उसके रगों में दोनों का खून होता है, और यही वजह है कि मां और बाप दोनों ही के जीन्स कि जो उनकी आदत और फितरत है वो उसके जीन्स के जरिए से ट्रांसफर हुई होती बच्चे में। और ये देखने में आया है कि बच्चा अभी पूरी तरह होश भी नहीं संभालता तो वो उससे जाहिर होने लगता है उन बहुत सी आदत जो बाप में होती हैं या मां में होती हैं। तो हम ये कहते हैं जेनेटिकली ट्रांसफर हुई है इसके अंदर। तो इसी तरह चूंकि अम्मा हव्वा ने बाबा आदम की पसली से जन्म लिया है तो बहुत सी चीजें बाबा आदम अलैहिस्सलाम की जेनेटिकली ट्रांसफर हुई अम्मा हव्वा में, और फिर उन दोनों से आगे औलाद आदम चली है। और हम अब भी ये कहते हैं कि वो इल्म जो अल्लाह ने बाबा आदम को दिया था वो तमाम इंसानों में जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है, اور روحانیت کے جراثیم ہر شخص میں پائے جاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ محنت کر کے اسے پالش کر لیتے ہیں, اسے فردر ڈیولپ کر لیتے ہیں, پالش کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ محنت نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ نہ ڈیولپ ہوتے ہیں نہ پالش ہوتے ہیں. تو اماں حوا میں نالج کی وہ اماؤنٹ تو نہیں ہے یقیناً, لیکن جینیٹیکلی کچھ نہ کچھ اماں حوا میں ٹرانسفر ضرور ہوا ہے. ایک اور سوال ہے کسی نے غیر ملکی سے بھیجا ہوا کہ kindly explain that what is soul, qalb and nafs and what are their roles and origins according to Islamic teachings. کسی نشست میں یہاں میں نے ایک عرض کی تھی کہ انسانی جسم میں سات لطائف ہیں جو انسان کی روحانیت میں بہت بنیادی رول پلے کرتی ہیں. ان میں سے دو قلب اور نفس ہیں. قلب ہماری, اگر کسی بھی انسان کو آپ سامنے سے دیکھیں تو اس کی لیفٹ سائڈ پر اس جگہ پر یہ قلب ہے, یہ لطیفہ قلب ہے, یہ ایگزیکٹ اس جگہ, اور اس کے مد مقابل دوسری سائڈ پر یہ اس جگہ یہ لطیفہ نفس ہے. اور روح کا جیسے میں نے یہاں دو تین بار ایک چیز بیان کی کہ روح کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ یہ امر ربی ہے اور انسان کے دل کے عین درمیان میں چھوٹی سی جگہ, اتنے بہت معمولی سی جگہ ہے, اس میں یہ رکھی جاتی ہے. جب جسم تیار ہو جاتا ہے تو علم ارواح سے اس جسم سے متعلق روح کو اذن روانگی ملتا ہے اور وہ فرشتہ اس روح کو ماں کے پیٹ میں بچہ جب موجود ہوتا ہے تو اس کے دل کے عین درمیانی حصے میں رکھ دیتا ہے اور وہیں سے اس کا دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے بچے کا, تو روح وہاں موجود ہوتی ہے. درحقیقت اصل چیز روح ہی ہے. اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں ماں سوائے اس کے کہ یہ روح کے عمل کا ایک میڈیم ہے. دنیا میں روح کو اگر چلنا پھرنا اور حرکت کرنی ہے, مختلف اعمال سرزد ہونے ہیں, تو وہ یہ اسی جسم کے ذریعے سے ہوتے ہیں. یہ ایک میڈیم ہے, اس کا ذریعہ ہے یہ, لیکن اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جو ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اس کے جسم سے, تو یہی جسم جو اتنا خوبصورت اور اتنی کارآمد چیز ہے وہ چند گھنٹوں میں گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بدترین قسم کی اسمیل اس سے اٹھتی ہے. جبکہ روح کی موجودگی میں یہی جسم جو ہے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے. تو اصل حقیقت اس کی صرف اتنی ہے کہ یہی انتہائی خوبصورت دکھائی دینے والا جسم اگر روح پرواز کر جائے تو چند گھنٹوں کے اندر متعفن ہو جاتا ہے, اس سے بدبو اٹھنے لگتی ہے. تو روح امر ربی ہے, قلب در حقیقت ٹھکانہ ہے روح کا, روح کا گھر ہے, اور روح جتنی پاکیزہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کا گھر صاف ستھرا ہوتا ہے, چمکدار ہوتا ہے, اور جتنی کثیف ہوگی روح اتنا ہی میلا کچیلا دل ہوگا کہ اس میں کینہ, کدورتیں, کثافتیں سب بھری ہوتی ہیں. روحانیت میں قلب کی صفائی پر اس لیے زور دیا جاتا ہے, بلکہ پہلا قدم ہی یہ ہوتا ہے کہ قلب کو صاف کیا جائے, کہ انسان کے دل میں کہیں کوئی ہلکا سا شائبہ بھی نہ رہ جائے کسی کدورت کا, کثافت کا, کینہ کا, इसलिए फकीर लोग सबसे मोहब्बत करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, कि वो अपने दिल की तरबियत करते करते कि ये इसमें कहीं कोई कीना कदूरत दुश्मनी बुगस हसद ये ना रह जाए, तो वो आदतन प्यार करने लगते हैं, सबसे दुश्मन से भी प्यार करते हैं। एक किस्सा मैंने पढ़ा था जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, ये गालिबन क्लास 4 की उर्दू की टेक्स्ट बुक में शायद पढ़ा मैंने, बड़ा अजीबोगरीब किस्सा था। थे वो कोई साहबी, लेकिन बदकिस्मती ये है नालायकी मेरी कि उनका नाम मेरे जहन से महव हो गया। क्लास 4 में पढ़ा था ये मैंने। वो साहबी अपने घर में थे तो सडनली उनके घर के दरवाजे पे बड़ी तेज दस्तक हुई, जैसे कोई शख्स इमरजेंसी में है और वो दरवाजा मुसलसल नॉक कर रहा है। तो साहब उठ के गए दरवाजे पे तो देखा कि एक आदमी हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा है जिससे खून टपक रहा है और उसके लिबास पर भी खून के धब्बे हैं। तो उसने जो ही दरवाजा खुला देखा अंदर दाखिल हो गया और कहने लगा कि मेरे दुश्मन मेरा ताकुब कर रहे हैं, मुझे आपकी पनाह चाहिए। तो इन बुजुर्ग ने उनसे कहा कि आइए तशरीफ ले आइए, अब आप मेरी पनाह में हैं। तो वो दाखिल हो गए, इनके घर में कमरे में बिठाया और उनसे कहा कि आप बेफिक्र हो जाइए, आपका कोई दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आप यहां इत्मीनान से बैठिए। तो फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊं और तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करूं। उस कमरे से निकल के तशरीफ ले गया, उसके 2-3 मिनट के बाद ही दरवाजे के बाहर शोर सुनाई दिया और किसी ने दरवाजा नॉक किया। इन बुजुर्ग ने जाके खोला तो सब मोहल्ले वाले थे इनके। तो उन्होंने पूछा कि इधर एक आदमी इसी सुलिए का आया तो नहीं है, उसके हाथ में नंगी तलवार है। तो ये खामोश हो गए, अब झूठ तो बोल नहीं सकते थे। तो कहने लगे क्यों क्या हुआ? कि वो आपके अकलौते जवान बेटे को इस चौक पे कत्ल करके दौड़ा है, हमने उसको इसी गली में दाखिल होते देखा है, तो अगर वो आए आपके घर तो उसे आप पकड़ लें। अच्छा ठीक। तो अंदर गए और जाके उसके बाद थोड़ी देर में उस आदमी के पास गए और जाके उसे लिबास दिया कि ये तब्दील कर लो, और उसको एक गठरी दी कि ये तुम्हारे खाने का सामान है, और दूसरी एक छोटी गठरी थी वो दी कि इसमें कुछ अशरफियां हैं, और कहा कि सिहन में मेरे अस्तबल का बेहतरीन घोड़ा मेरी सवारी का खड़ा है, तुम फिलफौर इस घोड़े पर सवार हो जाओ, यहां से निकल जाओ, क्योंकि जिस आदमी को तुमने कत्ल किया वो जवान मेरा अकलौता बेटा था, तो पिछतर इसके कि मेरा सब्र मेरा साथ छोड़ जाए और मेरे कबीले के लोग तुम्हें कत्ल कर दें, तुम इस जगह से चले जाओ। तो उसको नहायत इज्जत से रवाना कर दिया। ये कहानी मैंने उस वक्त पढ़ी थी जब क्लास 4 में था मैं, लेकिन उस उम्र में भी इस कहानी ने मुझे बेपना इंस्पायर किया था। लेकिन इस गलतफहमी में ना पड़ जाए कि मैंने कुछ सीखा इससे, सीखा बिल्कुल नहीं, लेकिन इंस्पायर बहुत हुआ। और मेरे दिल से आज तक ये दुआ निकलती है कि या अल्लाह मैं कभी इतना नेक नहीं हो सकता जैसे वो थे, और ये हौसला और ये हिम्मत मेरे अंदर पैदा नहीं हो सकती, ये मुझे मालूम है, अपने करतूत पता है मुझे, लेकिन उसका एक हल्का सा अक्स मुझे अता कर दे, ये हौसला और ये सब्र और ये तहम्मुल बर्दबारी और तेरी मखलूक से प्यार का ये आलम, इसका एक हल्का सा अक्स अता कर दे। लेकिन लगता है कि वो भी नहीं मिलेगा, ऐसे ही चला जाऊंगा। तो लोग कल्ब को यूं साफ रखते हैं अपना। सॉरी आपका बहुत वक्त आज मैं ले गया हूं।